हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनामिका बिल्कुल उसके सामने कुर्सी पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही झपकियां ले रही थी। ये दृश्य देखकर झलक की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो सोचने लगी, ये पूरी रात ऐसे ही बैठकर सोती रही या किसी काम से आई थी? आखिर यहाँ बैठकर क्या कर रही है? इस वक्त उसके दिमाग में काफी ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो जल्दी से आगे बढ़ी, अनामिका के कंधे पर हाथ रखा और उसे झकझोड़ते हुए बोली, अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तबीयत ठीक है? तुम इस तरह से यहाँ क्यों आई हो और ऐसे क्यों सो रही थी? अब जैसे ही झलक ने अनामिका को उठाया, अनामिका जल्दी से उठकर बैठ गई और बोली थी, अरे सुबह हो गई? वो ये कहते हुए उठ गई और आगे बोली, तुम जानती हो ना, मुझे तो जरा भी नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर तुमने क्लब के बारे में सारी बातें दादाजी को बता दी, वो थोड़े दिनों के लिए पूरी तरह से मुझे बंद कर देंगे। प्लीज़ 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 यार झलक। वो थोड़ा रुककर फिर बोली, मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई थी। जब तुम अपने कमरे में सो गई थी, तब मैं तुम्हें उठाकर इस बात के बारे में बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन अब तो तुम उठ गई हो ना। तुम तो मेरी प्यारी बहन हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनोगी ना? अनामिका की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। अब तुम प्लीज़ किसी को नहीं बताना कि हमारे साथ वहाँ क्या हुआ था, प्लीज़ प्लीज़। और रही बात गार्ड की, तो उन्हें मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, वो किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे भी वो पुराने वफ़ादार आदमी हैं, तुम समझो ना मेरी बात। ये सब सुनकर झलक का दिल तो किया कि वो खिलखिलाकर हंस पड़े। वो मन ही मन सोचने लगी थी कि इस लड़की को बस ये सोचकर पूरी रात नींद नहीं आई कि कहीं मैं ही क्लब की बातें किसी को बताना दूँ। तब झलक ने अपने आप पर कंट्रोल किया, उसकी ओर देखकर बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। जैसे ही अनामिका ने ये सुना, उसने राहत की गहरी सांस ली और फटाफट झलक को गले से लगा लिया। उसके गालों को चूमते हुए वो बोली थी, थैंक यू मेरी जान, थैंक यू। तुमने तो मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी। तुम जानती हो, टेंशन की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं कब बैठे बैठे मेरी आँख लग गई, मुझे कुछ एहसास ही नहीं रहा। फिर वो जल्दी से बोली, अब मैं जाती हूँ, फटाफट से तैयार होती हूँ और आज फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। ये सुनकर झलक की आंखें थोड़ी हैरानी से बड़ी हो गईं। वो सोचने लगी, इस लड़की को बस थोड़ी सी इजाज़त क्या दे दी, अब ये कुछ ज़्यादा ही भावनाओं में नहीं बह गई है, अब पता नहीं मुझे कहाँ लेकर जाएगी। लेकिन फिलहाल अनामिका की खुशी के आगे झलक ने कुछ नहीं कहा, वो भी फटाफट वॉशरूम में जाकर चेंज करने के लिए घुस गई। उधर नीचे हॉल में एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। दादाजी, स्नेहा, रोहन, क्योंकि रोहन की ऑलरेडी कुछ छुट्टियां चल रही थीं इसीलिए वो भी उन सब के साथ मौजूद था, साथ ही साथ सौरव जी भी वहां बैठे हुए थे। सभी एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बात कर रहे थे। तभी स्नेहा जी थोड़ा सा इमोशनल हो गईं। उन्होंने दादाजी की ओर देखते हुए कहा, अंकल जी, हम जानते हैं कि आप लोगों ने हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दी है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम आपके परिवार पर कोई बोझ बन गए हों। हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाहता इस तरह से यहाँ रहने के लिए। वो रुककर आगे बोली, भले ही हम लोग गरीब रहे हों, लेकिन हमने कभी भी किसी के आगे इस तरह हाथ नहीं फैलाया है। स्नेहा जी की ये बात सुनकर दिग्विजय जी के माथे पर बल पड़ गए। वो तुरंत गंभीर होते हुए बोले, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम जैसी हो हमारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो, और ऐसे ही पसौरव बेटा और रोहन भी। अब तुम लोग हमारी जिंदगी, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। उनकी आवाज़ में भावुकता साफ थी। तुम क्या जानो, इस बूढ़े के लिए इतने सारे दिन अपने बच्चों के बिना गुजारना कैसा लगता है। सिर्फ और सिर्फ बच्चों के नाम पर हमारे पास अनामिका थी, लेकिन हमने उसे भी कभी अपने पास नहीं रखा। वो थोड़ा रुककर गहरी सांस लेते हुए बोले, इस डर की वजह से कि कहीं कोई दुश्मन हम पर हमला ना कर दे, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और हमारा बिजनेस कहाँ कहाँ तक फैला है, ये बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने सबकी ओर देखा और आगे कहा, इतना ही नहीं, अगर किसी को इस बात की भनक भी लग जाती कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वारिस यानी अनामिका मल्होत्रा गायब है, तो तुम जानते भी हो क्या हो सकता था। इसलिए हमने सब कुछ बहुत सोच समझकर मैनेज किया। अनामिका को एक अलग पहचान के साथ एक ग्रुप के जरिए देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए भेजा गया। उसकी असली पहचान वहाँ पूरी तरह से राज रखी गई ताकि उस पर किसी भी तरह का कोई खतरा ना आए। लेकिन अब हमें हमारी पोती, हमारा बेटा, साथ साथ ये प्यारा सा पूरा परिवार वापस मिला है, तो तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो बेटा? इस तरह के ख्याल अपने दिल और दिमाग से पूरी तरह से निकाल दो। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हें यहाँ रखकर हमने तुम पर कोई एहसान किया है, तो तुम लोग चाहो तो हम अपनी आधी से ज्यादा जायदाद अभी इसी वक्त आप लोगों के नाम कर सकते हैं। ये सुनते ही सौरव जी और स्नेहा जी की आंखें बड़ी हो गई। दोनों एक साथ उठकर खड़े हो गए और बोले, नहीं नहीं अंकल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं था। लेकिन तभी रोहन मासूमियत से उठकर सीधा दादाजी की गोद में बैठ गया और बोला, मुझे नहीं पता आप लोग क्या बातें कर रहे हो, लेकिन मैं अपने दादाजी को छोड़कर अब कहीं नहीं जाने वाला। मैं तो हमेशा इन्हीं के साथ रहूंगा। रोहन की ये बातें सुनकर सभी के चेहरों पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी आरव जी भावुक होकर बोले, स्नेहा, मैं जानती हूँ कि तुम शुरू से कितने ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट और मजबूत रहे हो। इतना ही नहीं, तुमने कभी किसी को अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दिया। वो थोड़ी देर रुके, फिर बोले, लेकिन स्नेहा, तुमने मेरी बच्ची को बचाया है, क्योंकि अगर वो नैना वहां होती तो न जाने अपनी नफरत में हमारी बच्ची के साथ क्या कर बैठती। हो सकता है उसे किसी ऐसी जगह फेंक देती जहां से वो कभी लौट कर नहीं आती। उनकी आवाज भर्रा गई थी, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बच्ची झलक को अपनाया, उसे माँ का प्यार दिया, उसकी हर जरूरत और हर ख्वाहिश पूरी की। तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि अगर हम अपनी सारी जायदाद भी तुम्हारे नाम कर दें तो भी वो कम है। ये सुनते ही स्नेहा जी सम्मान और भावनाओं से भरकर फूट फूट कर रोने लगी। सौरभ जी उन्हें संभालते हुए बोले, शांत हो जाओ स्नेहा, प्लीज शांत हो जाओ। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोले, वैसे भी ये पूरा परिवार आज जो एक साथ खड़ा है वो सब झलक की वजह से है। वो हमारी झलक, तुम जानती हो ना उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, और अब देखो आज भी उसने हमारी सारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। इतना ही नहीं, क्योंकि सौरभ जी अपने गांव से जुड़ाव के कारण वहां का घर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए दिग्विजय सिंह जी ने उनके गांव के घर को एक बहुत ही खूबसूरत बड़े घर में बदलवाने का इंतजाम कर दिया था, ताकि जब भी सौरभ जी, स्नेहा जी या परिवार का कोई भी सदस्य चाहे अपने गाँव जाकर सुकून के पल बिता सके। सिर्फ इतना ही नहीं, आसपास की जो जमीनें कर्ज में गिरवी पड़ी थीं, वे सब भी छुड़वा दी गईं, सब कुछ दोबारा उनके नाम कर दिया गया। एक तरह से अब सौरभ जी और उनका परिवार उस गांव के सबसे बड़े और अमीर जमींदार बन चुके थे। कहीं न कहीं इस बात की सबसे ज्यादा खुशी झलक को थी। तभी सौरभ जी ने सही मौका देखकर कहा, देखिए मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हैं कि हम लोग यहीं रहें, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना कुछ दिनों के लिए आप सब हमारे साथ गाँव चलें, वहाँ की दुनिया देखें। हमें पूरी उम्मीद है कि गाँव की जिंदगी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी।
जैसे ही सौरभ जी ने अपने दिल की ये ख्वाहिश सबके सामने रखी, दिग्विजय सिंह जी मुस्कुराकर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, हम जरूर चलेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अभी यहाँ पर जब तक झलक पूरी तरह से हर चीज में परफेक्ट नहीं हो जाती और जब तक वो सीईओ नहीं बन जाती, तब तक हमारा कहीं जाने का प्लान नहीं है। लेकिन हम वादा करते हैं, एक वेकेशन के लिए हम जरूर गाँव आएंगे। ये सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। उधर सीढ़ियों पर खड़ी झलक ये सारी बातें सुन चुकी थी। वो कब से वहीं खड़ी सब कुछ देख और सुन रही थी। उसके दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून और राहत थी कि आज उसे उसका भरा पूरा परिवार मिल गया है।